अकबर ने पूछा बीरबल को कि कौन है नमक हलाल और कौन है नमक हराम। बीरबल ने कहा मैं कल ले आऊंगा दोनों सैंपल। दूसरे दिन बीरबल ले आया अपना एक पाला हुआ कुत्ता ले आया और अपना जमाई को बुला लाया। बोला हजूर ये तो है नमक हलाल, रूखी सूखी खाता बेचारा बिना कहे चौकी करता है, ये तो है नमक हलाल। और ये है नमक हराम। 18 साल की लड़की दी, दहेज दिया, फिर भी ससुराल में पहली बार आते ने तो सासू ससुरा डरते न जाने क्या चीज मांग ले, फ्रिज मांग ले के स्कूटर मांग ले के कार मांग ले, कितना दहेज मांग ले, न मिले तो पेटी नार दुखी होगी। इसलिए हजूर इनको बोलते जम आई मना मौत आई जम आई मने। अकबर ने बोला जमाइयों को फांसी लगा दो। बीरबल बड़ा सियाना था, उन्होंने देखा कि आजकल बरसात आती हो गई, किसानों के धंधे बंदे हो गए बेचारों के, लोगों को काम धंधा नहीं है और जरा गुजारे में तकलीफ है। बोले जो आ गया हो, कहीं तो काठी की रस्सी, कहीं सूती की रस्सी, कहीं सूतली की रस्सी, कहीं रेशम की रस्सी, कहीं लोहे के फांसे, कहीं तांबे के फांसे, कहीं पीतल के फांसे, कहीं चांदी के फांसे, ऐसे फांसे बनवाने का उद्योग घर घर में चालू करवा दिया। खूब उद्योग चला, दो चार महीने लोगों को रोजी रोटी मिली, फिर फसल के दिन आए। हाँ अकबर को बोला कि जहां पना ये जमाइयों को फांसी देने का योजना पूरी तैयार हो गई है, केवल जहां पना आकर मुआवजा ले ले साइड पे और फिर उद्घाटन करे, रिबिन काटे। जहां पना आए देखे कि अरे वाह बहुत सारे फांसे हैं। ऐसे करते करते आए देखे तो ये चांदी के फांसे और पास में एक ही फांसा चम चम चमक रहा था सोने का। बोले ये, बोले चांदी के फांसे तो मंत्रियों के लिए है, बड़े आदमी है तो बड़ा बढ़िया फांसा चाहिए, और आम पब्लिक बेचारे जिनका हम टैक्स चूसते हैं उनके लिए तो साधारण शमशान होता है, साधारण व्यवस्था होती है। जिनका टैक्स लेते हैं उनके लिए तो साधारण फांसे, लेकिन जो टैक्स हम लेते हैं हमारे लिए तो जरा होना चाहिए ना। तो बोले ये चांदी के तुम्हारे लिए, लेकिन ये सोने का किसके लिए? बोले ये जहां बना आपके लिए, आप भी तो जमाई हो किसी के। कायदा तो कायदा है। बोले कायदा कैंसल करो। जयराम जी बोलना पड़ेगा, फांसा तो फांसा होता है भाई, फिर सोने का हो तो क्या और तांबे का हो तो क्या, लोहे की वायर हो तो क्या। ऐसे ही जन्म मरण माँ का गर्भ और मौत का भय, संसार में घोड़े बने, गधे बने, हाथी बने, मनुष्य बने, लेकिन दुख तो सब जगह है, फांसा तो है। इस फांसा को काटने के लिए भागवत है जयराम जी की। कुछ मंत्रियों ने अकबर की जो खास प्यारे में प्यारी अत्यंत प्यारी औरत बेगम थी उसके भाई को भड़काया कि अकबर तेरी बहन की बात मानता है और वो उस तेरी बहन कोशिश करके बीरबल को निकाल दे तो हम बीरबलिया की पोस्ट पर तेरी नियुक्ति करवा देंगे। हाँ जनाबे आली फिर तो तुम मुख्यमंत्रियों जैसे रुबाब से रहोगे। हाँ जनाबे आली, दूसरा कह रहा हाँ आली करिए ये कुछ। वो मैम साहब का भाई सोचने लगा कि बीरबल को निकालना है, वो अपनी बहन को रोज रोज बोले कि बीरबलिया को निकालो, अच्छा नहीं ऐसा नहीं। अब उसकी बहन बेगम राजा को बोले, राजा बोले उसका कोई नुकस तो बताओ। बीरबल इतना बुद्धिमान और बुद्धिमानों से वैर लेना मूर्खता है, बुद्धिमानों को पदच्युत कर देना अपने पैर में कुहाड़ा लगाना है, बुद्धिमानों से दुश्मनी भी नहीं लेना चाहिए और बुद्धिमान मंत्री या साथियों को दूर नहीं हटाना चाहिए, और जो अपनी वीक पॉइंट जानता हो उसको भी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, ये नीति है। मेरे साथ रहता है, मेरी सब 19-20 बात जानता है और बुद्धिमान है, उसको कैसे निकालूंगा, और उसका कोई नुकस नहीं। बोले उसका नुकस मैं बताती हूँ। उसने क्या करा, चूड़ियां फेंक दी, बाल खोल दिए, खटिया ऊंधी कर दी, बुरखा बुरखा फेंक दिया, रूठ के बैठ गई। बोले बीरबल को बोलो बेगम को मना के राज दरबार में ले आओ। अब मैं तो राज दरबार में आती नहीं, आ नहीं सकती हूँ, और मुझे वो मना नहीं सकता, मैं तो रूठी रहूंगी। मुझे कितना भी आत्था जोड़ी करे मैं तो मुंह को थोपड़ा बनाकर बैठी रहूंगी, फिर वो क्या मुझे मना लेगा। आप बोल देना जा ये काम में तू विफल हो गया तो हम तेरे को निकाल देते बस। अकबर ने कहा ये टेढ़ी खीर है, चलो ट्राई कर लेते हैं। अकबर गया राज दरबार में, बीरबल को बोला कि बीरबल आज एक काम है तुम ही कर सकते हो। बोले कहिए जहां अपना। बोले बेगम रूठ गई है, हार सिंगार फेंक कर उंधा खटिया करके बैठ गई, अब तुम ही उसको मना कर ला सकते हो। बीरबल चौंके कि अपनी बेगम को मनाने के लिए मंत्री भेजा जा रहा है। जयराम जी की जरूर कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है भांजे। जयराम जी की बीरबल बेगम के पास नहीं गया, राजमहल में दास दासियों से सारी बात जान ली। फिर बीरबल ने एक आइडिया, क्षण भर ध्यान किया, आइडिया आ गया। बीरबल जो बेगम के नजदीक गए, बेगम को पता चल गया, मुंह को बना दिया भप्पू। बीरबल समझ गया कि इसको पता है कि मैं आ गया हूं। इतने में दास दासियां दौड़ते आए, बीरबल बीरबल अकबर बादशाह तुम्हें बुला रहे हैं, वो अफगानिस्तान की शहजादी जो खूबसूरत है, खूब गुणवान है, उसके सिवा जहां पना नहीं रह सकते। बीरबल वो अगर दूसरी जगह उसका शादी हो गया तो जहां पना बोलते हैं कि जुल्म हो जाएगा, और ये शादी तुम ही करवा सकते हो। बीरबल जहां पना बोलते बीरबल को बुलाओ, इस बेगम की अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। बीरबल ने कहा बिल्कुल सच्ची बात है, ये तो रूठी हुई भप्पू बनाए हुए है, मैं तो उसी के साथ जहां पना को शादी करवाता हूँ, महल में तो उसी की चलेगी, ये तो दासी बनकर उसकी पैर चंपी करेगी। हाँ चलो चलो। बेगम बोलती बीरबल बीरबल कौन उस रांड शहजादी को क्यों लाओगे, फिर मेरे को कौन पूछेगा। बीरबल 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 ने देखा ठीक जगह पे निशाना लगाए तो चुप क्यों रहे। बीरबल तो चलता बना, जैसे बकरी हरे घास के पीछे पीछे, ऐसे ही वो बेगम बीरबल के पीछे पीछे। ओ खुले बाल नंगे पैर, ओ बीरबल ओ बीरबल, भैया सुन तो सही, अरे बीरबल बीरबल मेरा क्या होगा। बीरबल वो छिनाल आएगी और मैं उसके पैर चमकी करूंगी क्या। बीरबल मैं तो डूब मरूंगी, बीरबल मैं तो जहर खा लूंगी। बीरबल ओ सुन रे बीरबल, बीरबल को माता जी चली आओ पीछे पीछे। जयराम जी बोलना पड़ेगा। बीरबल जाकर राज दरबार में राजा के सिंहासन के पास खड़ा हो गया। इतने में तो वो आ गई। लोग बाजार के लोग ताजुब खा गए कि जिसने कभी कारपेट से नीचे हाथ पैर नहीं रखा गलीचे से, वो नंगे पैर जा रही है और पैर में कंकड़ पत्थर चुभाए खून बहता जा रहा है। आखिर बीरबल ने क्या करामत कर दी। बीरबल बीरबल करते बीरबल आगे ये पीछे दासी की नाई। लोग भी झुंड के झुंड पीछे देखने लग गए। वो राज दरबार में बीरबल पहुंचाए आ गई। अकबर ने पूछा कि रांड तू इधर कैसे पहुंची, तूने तो बोला था मैं रूठ के बैठी रहूंगी, तू इधर कैसे पहुंच गई। बोले आप वो शहजादी से शादी नहीं करेंगे मेरा क्या। बोले कौन सी शहजादी। बीरबल क्या बात है। बीरबल ने कहा जहां पना आपका हुक्म था राज दरबार में लाने का, कैसे भी आ गई राज दरबार में तुम्हारे सामने। कैसी रही होगी होगी बीरबल बुद्धि। जयराम जी बोलना पड़ेगा। विघ्न बाधाओं शत्रुता से व्यवहार करने वाले सारे मंत्री आखिर तक थक गए, लेकिन बीरबल का बाल बांका नहीं कर सके, क्योंकि ददामी बुद्धि योगम तम। बीरबल को बुद्धि योग है, परमात्मा को पाने वाली बुद्धि है, तो संसार में सफल होना तो उनका है, आज का खेल है भैया। जयराम जी की। बीरबल से अकबर ने पूछा कि इस सभा में कितने लोग बहरे हैं, तो बीरबल ने 1 2 3 4 चुटकुले बोले। चुटकुले सुनकर सब लोग हंसे। फिर बीरबल ने निगाह डाली तो जो बहरे थे तो बीरबल ने अकबर को बताया कि सभा में चार बहरे लोग हैं। अकबर ने कहा यहाँ बैठे बैठे कैसे बताया? बोले बहरा दो बार हंसता है, मैंने हंसी की बात कही तो सबके साथ सब हंसे, फिर जो नहीं समझे उन्होंने पूछा और फिर समझ के हंसे। तो ऐसा एक बार दो बार तीन बार चार बार चुटकुले छोड़े तो वही लोग दोबारा दोबारा पूछे और दोबारा दोबारा हंसे। महाराज मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि फलाना 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 ए कह रहे हैं। तो ये बुद्धि सब जगह चाहिए। अकबर को कभी कभी ऐसा होता था कि बीरबल को छेड़कर कुछ न कुछ ज्ञान पैदा हो जाए। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से, बीरबल क्या मैं हिंदू बन सकता हूँ? बीरबल बोला नहीं आप हिंदू नहीं बन सकते। बोले क्यों? बोले नहीं बन सकते मैं बोलता हूँ। बोले क्या तू बोलता? क्या मैं हिंदू नहीं बन सकता? बोले नहीं बन सकते, जाओ तुमको हम निकाल देते, हमको मुंह मत दिखाना, चले जाओ घर। बीरबल चला गया। बीरबल जानता था कि अकबर को कैसे ज्ञान की जरूरत पड़ती। बीरबल ने देखा कि अकबर तो घूमने को आते यमुना किनारे। एक दिन यमुना किनारे बीरबल खाकर गधे को लाकर बार बार पानी लगाए गधे को और साबुन से धोए गधे को, बार बार पानी छाट के साबुन से नहलावे। गधा कूदे लाते मारे फिर भी बीरबल ऐसा करे तो अकबर का ध्यान खींचे। अकबर राउंड मार रहा था, अकबर देखे कि आदमी लगता तो बीरबल जैसा है, नजीक गया। बोले अरे तू तो बीरबल है यहां, क्या करता है? गधे को जबरदस्ती क्यों नहीं लाता है, बार बार साबुन लगाता है? बोले मैं इसको गाय बना रहा हूं। अरे जबरदस्ती गधे को साबुन लगाने से गाय कैसे बनेगी? बोले क्यों नहीं बनेगी? बोले गधे को साबुन लगाने से गाय बन जाएगी। बीरबल गधा कभी गाय नहीं बनता साबुन लगाने से। बोले तभी तो मैं कहता हूं कि आप हिंदू नहीं बनेंगे। बोले बीरबल के बच्चे तू बड़ा चला। अच्छा चलो चलो राजकाज में चलो, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान की जरूरत है, चलो। जो बुद्धिमान होता है वो दबता नहीं है, जयराम जी। जो बुद्धिमान है वो डरता नहीं है, और जो बुद्धिमान है वो जल्दी फंसता नहीं। अहंकार आ जाए तो फंसे। बाकी बुद्धिमान हो, शांत हो, भगवान में प्रीति हो, भगवत प्रेरणा मिल जाती है उसको। एक बार बीरबल देर से आया सभा में। अकबर ने बोला बीरबल हद हो गई इतना देर से। बोले मेरा बेटा रूठा था, उसको जरा पटाने में देर लगी। बोले बेटे को पटाने में क्या देर? बोले माल हट राज हट योग हट, वो हट पे चढ़ गया था। बोले हट पे चढ़ गया तो क्या बड़ी बात है? बोले हजूर आप बोलते कल बड़ी बात है, आप जरा बेटों के हठों को बच्चों के हठों को देखो ना तो दंग रह जाओगे। बोले इसमें क्या बड़ी बात है? बोले अच्छा मैं आपका बेटा बनता हूँ, हट करता हूँ, आप मेरी हट पूरी करो। बोले कर, बन जा। बोले पिताजी क्या चाहिए? बोले पिताजी देग चाहिए, देगड़ी। बोले नौकर को बोला देग ले आओ, लाए देग। बोले क्या चाहिए? पापा पिताजी हाथी चाहिए। बोले ले आओ हाथी। बोलो बेटा पिताजी हाथी इस गुन्ने में इस देगड़े में डाल दो। अगर बोले ये कैसे होगा, वे नहीं डाल दो ना ये आती इस देख में डाल दो ना डालो बोले नहीं नो रोने लग गया। बोले तो बोले बीरबल ये तो भाई तुम ऐसी मांग करते भी संभव नहीं। अरे बोले ये तो बहुत छोटी बात है, बच्चे तो बोलते हो चांद ला के दे दो, कृष्ण भी यशोदा को बोलते थे बुला के दे देना दे देना। वो वात्सल्य प्रेम उभारने के लिए कृष्ण करते थे, वैसे तो थे जानकार। अकबर ने बोला अच्छी बात है, अब हम बेटे बनते तुम हमारे बाप न। बोले आज मौका बड़ा सोनेरी सूरज है, जहां बना के बाप बनने का अवसर आया। बोलो बेटा क्या चाहते हो? बोले पिताजी पिताजी बोले बेटा क्या चाहिए? बोले देख मंगा दो। बोले ले बेटा ये देख। फिर बोले बोले क्या चाहिए? बोले हाथी। बीरबल ने पैसे दिए, दो खिलौने वाले हाथी ले आओ। आधे बुड की एरिया के हो खिलौने के हाथी। बोले बेटा एक हाथी नहीं देख, दो रंग बिरंगी हाथी है। बोले पिताजी देख में डाल दो। बोले एक डाल दूं कि दो? दोनों डाल दी। बोले ले बेटे बेटे चुप हो जा। तो अकबर रूपी बेटे को बीरबल रूपी बाप ने पटा लिया। ऐसे ही मन रूपी बेटे के आप बाप बन जाओ कि क्या मांगेगा तो पहले से ही ऐसे खिलौने की आइडिया लगाओ। मास्टर ने कहा बच्चों को कि बेटे मेरा कुर्ता फट गया है, कोई बेटा जाए, गांव तो थोड़ा दूर है, गुरुकुल में रहता हूँ आजकल, मेरे गांव से कोई घर से सुई ले आए। वो लड़का बोले मैं जाऊँ, बोले मैं जाऊँ, बोले मैं जाऊँ। गुरु ने समझाया लेकिन लड़कों की इतनी उत्सुकता सेवा भावना कि सबने कहा कि हम लाएंगे हम लाएंगे। अब एक को बोलते तो दूसरे दुखी होते। गुरु जी ने कहा अच्छा जाओ तुम दस के दस जाओ सुई ले आओ। बोले गुरु जी दस के दस सुई कैसे उठाएंगे? बोले बांस में सुई गाड़ देना और दस के दस बांस पकड़ के आ जाना, दसों को गुरु जी की सुई लाने का मजा आ जाएगा, सेवा हो जाएगी। भोले लड़के थे, चलो ठीक है। चलते 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 थे तो गुरुकुल और गुरु के गांव के बीच बरसाती नदी, बालू बालू दिखता था, गर्मी के दिन थे। तो देखा कि अरे ये तो नदी बह रही है, था तो सूरज के किरणें हवाएं लेकिन लगी नदी। बोले यार ये तो नदी है। बोले नदी तो क्या है, नदी पार करके जाएंगे, गुरुजी के गांव से सुई लाएंगे। बोले बादशाह दस्तगीर हमारी रक्षा करे, दस्तगीर बाहो पीर जिंद पीर असाजी संभाल ले। सबने अपनी अपनी सलवारें, वो जमाने में सलवार पहनते हैं पुरुष भी पाकिस्तान के, अभी भी पहनते, सलवारें थोड़ी ऊपर उठाई और चलते गए। उठा तो बालू बालू लेकिन नदी है, नदी है दूर से दिखती थी, तो सलवारें ऊपर उठा उठा के चल दी। फिर किसी ने पीछे मुड़ के देखा तो बोले नदी तो यार पार हो गई, नदी तो पीछे हो गई। आते हैं फिर सलवारें बलवार ठीक है, या अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा देखो कोई डूब तो नहीं गया, डूब तो नहीं गया? तो फकीर मोहम्मद ने कहा खड़े रहो लाइन लगाओ, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। बोले एक घट गया। फिर सरदार सुरजीत का वार आया, सुरजीत बोले मैं गिनता हूँ, वो एक ए दो ए तीन ए चार ए पंज ए छः ए सत ए आठ ए नौ है यार, वो बंदा कोई डूब गया सी। फिर मारवाड़ी ने कहा थारी भी पढ़ाई ऐसी थी, एक मोड़ डूबो कटे रहे, हमें आबारे तो आए रहा हूं। हैंग मलन लेन लगाओ मुंह गणो, मुंह आठ आठ नीचे ओपड़ी पड़ी रही हूं, एक दो तीन चार ए पांच हुआ ए एस हुआ ए सात हुआ ए आठ हुआ अने ए मोरा रोमा पीर नौ हुआ दसमो कटे गयो मोरा रोमा पीर मारवाड़ी ने भी नौ ही गिने ऐसे सभी छोरों ने नौ गिने अपने को नहीं गिना बाकी के गिने चले थे दस और मिले नौ फायरे तो अज्ञान था मरुभूमि में पानी नहीं था और पानी मान रहे थे तो अज्ञान के कारण आ हुआ और आवरण के कारण दस होते हुए भी आवरण ने नौ दिखाए नौ दिखाए तो विक्षेप हुआ हाय रे हाय या अली या उसे या अली और कूट कूट के किसी के हाथ में अंगूठी तो भीमड़ा भी हो गया अज्ञान आवरण विक्षेप कोई बुजुर्ग आदमी ने देखा कि सब स्यापा कर रहे अरे क्या है बच्चे बोले गए थे गुरुजी के गांव में जाने के लिए निकले थे नदी तो पार हो गई एक आदमी डूब गया बोले कहां से पार किया नदी बोले वो नहीं सामने वो हमने पार किया एक आदमी डूब गया आदमी उस इलाके का जानकार था बोले ये तो मरुभूमि में नदी देख रहे हैं बच्चे बोले तो कैसे डूब गया बोले हम दस थे तो एक कहां गया बोले डूब गया तो बोले अभी कितने हो तो बोले अभी तो नौ है बोले मेरे सामने गिरो तो फिर एक लड़के ने गिना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ सबने गिना बोले ऐसी आगे जैसे ऐसी झूठ थोड़ी बोल दे प्रा है सरकार फिर से गिन और एक और भाई तू इतने अट और दो और दूसरा अट्टा और तीन और चार सारे छोरे कहते भाई ठीक है सरदार और गिन ए पंज ए छ ए सत ए अठ ते हुण नौ ओ बुजुर्ग आदमी के हाथ में था डंडा हल्का सा पीठ पे डंडा ठोका बोले दसमा तू है ए ओ मैं तो अपने नु ही भूल जाता ओ मैं तो अपने नु ही भूल बैठा था यार ओ सारे बंदे अपने नु ही भूल लेते हो ओ यार अड्डो गई यार इतने दे इतने दे दस ही दस दे ओ नौ आगे दे सारे बंदे नौ ही नौ गिनते यार तो क्यों होया पहले होया अज्ञान फिर हुआ आवरण फिर हुआ विक्षेप फिर हुआ परोक्ष ज्ञान की दसवां है कहाँ है कि इधर ही है तो थोड़ी शांति मिली फिर बोला दसवां तू है तो अपरोक्ष हो गया तो जो शोक था ने नौवां दसवां डूबने का वो चला गया और आनंद की प्राप्ति हुई तो ये सात अवस्था जीव की होती है अज्ञान आवरण विक्षेप परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति आनंद की प्राप्ति ये सात अवस्था जीव की होती है तो जैसे जानकार आदमी ने कहा दसवां तू है ऐसे पांच ज्ञान इंद्री आंख देखती है बोले मैं देखता हूं नाक सुनता है बोले मैं सुनता हूं जीभ चखती है कान सुनते हैं त्वचा स्पर्श करती पांच ज्ञान इंद्री चार अंतःकरण ये नौ तो हुए दसवां है तू जीवात्मा वो अपने को गिनता नहीं इन्हीं का करा करा मानता है कोई सदगुरु मिल जाए तो बोले भाई तू आत्मा है कि मैं आत्मा हूं कैसे तू अमर है क्या तो भगवान से मिलना है बोले मिला गुरु जी मिलाओ तो गुरु जी ने ये अज्ञान आवरण और विक्षेप में पड़ा हुआ जीव को आत्मज्ञान दिया परोक्ष ज्ञान फिर साधन भजन बना बता के ओ जैसे गिनती करवाए ऐसे ये शरीर तू नहीं मन तू नहीं इंद्रियां तू नहीं ऐसे करते इन सब को देखने वाला तू ज्योति स्वरूप साक्षी है तत्त्वमसी तो हो गया ज्ञान ओ भला होया ओ पा लिया ओ पाया क्या वो था ही दसवां पाया क्या वो दसवां तो था ही ऐसे परमात्मा को पाना क्या परमात्मा तो था ही लेकिन भूल मिटाया ओ भूलिया जब ही आपनु तभी होया खराब एक भूलिया दूजा भूलिया भूलिया सब संसार बिन भूलिया एक गोरखा जिन्हों गुरु दा आधार जिन्हों गुरुओं दा सत्संग दा आधार है वो अपनी भूल मिटाने ओ फूल मिटा दे रब नु पान दे ओ भूल मिटी तो रब मिले तो भूल मिटी दसवां मिटा तो दसवां मिला तो भूल मिटी तब दसवां मिला
एक कमरे में दो आदमी लड़ रहे थे तो एक बड़ा ऐसा समझदार गधा आकर खड़ा हो गया बड़े कान इधर उधर करने लगा तो कोई मेहमान गुस्सा तो गधे से पूछा कि मिस्टर ढोंकी तू यहां क्यों खड़े है बोले मेरा बेटा खो गया इसको खोजने आया तो तेरा बेटा कोई इस कमरे में घुसा होगा क्या हाँ जरूर ऐसे ही लगता है बोले कैसे बोले दो आदमी कह रहा है कि गधे का बच्चा दूसरा कहता है तू गधे का बच्चा देखूं कौन सा मेरा बच्चा है वो सरदार जा रहे थे दो ब्राह्मण ने देखा ओ बेटे ए ओ सुरजीत ओ हरगोविंद ओ बेटे इधर आओ आए बेटे ऐसे करो कितने जा रहे थे बोले स्कूल जा रहे थे बेटे ऐसे करो सरदार ओ ये लड्डू है दो ओ यज्ञ है ना उसमें डाल दो बोलो स्वाहा अब वो सरदार के बच्चे थे गुरु ग्रंथ साहिब का वो सारा संतों का ब्रह्म ज्ञान का कथा सुने हुए थे थोड़े बेटे ऐसा करो कर्मकांडी ब्राह्मण था ऐसा करो कि लड्डू यज्ञ नाल पाले और बोलो स्वाहा उन बेटों ने की जीता सुन लो सरदार सरदार का बेटा भी सरदार होता है उन बेटों ने की किता वो दो लड्डू और मुंह नाल पाली है वो यज्ञ नाल पाने थे अपने मुंह विच पाली है और सरदार बोले स्वाहा ब्राह्मण ने बोला यज्ञ में डालो बोलो स्वाहा और सरदारों ने मुंह में पाया बोले आहा ओ बोले की किता यार तुसी स्वाहा करना सी उत्थे इत्थे की पाया बोले ब्राह्मण देवता वो यज्ञ में अग्नि भी रब दी है और इत्थे पचाने वाली अग्नि भी रब दी है ओ यज्ञ नाल पांदे स्वाहा हुंदा है और मुख नाल पांदे तो आहा तो तुसी भी जब भोजन करो ना के आहा यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वाहा करने दो लेकिन तुम्हारे मुख में जब तुम खाओ तो के आहा मैं तेरे को भोग लगाता हूँ जय राम जी पेट तेरा भरेगा और भोग ठाकुर जी को लगेगा कैसी बढ़िया साधना है जब खाओ ना के आहा मैं तुझे अर्पण करता हूँ तू ही भोजन भोक्तारम यज्ञ तपसाम तेरा वचन है कि यज्ञ तपसा और सुख का भोगने वाला मैं हूँ तो तू ही भोगने वाला तेरे कोई भोग लगाता हूं मैं कौन होता हूं खाने खिलाने वाला ठाकुर जी तेनू अर्पण है आहा चाहे रूखी रोटी मिले कर दे आहा ये तो कर सकते ना जयराम जी की ओ तेरा पाना मीठा लागे जो तित भावे सो भली कार ओ चल दे किसी ने एवं कर दिया के आहा ये जगत तो ठोकरों का घर है लेकिन मैं तो तेरे घर हूं तू मेरे घर है आहा